अमिने ज्ञातया तुरं गजः। सहस्र वर्ष ग्राह के साथ युद्ध करते करते गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो गई। तभी विचार करने लगे कि मेरे पराभव का कारण क्या है। अंत में उन्हें एक विशिष्ट बुद्धि प्राप्त हुई, वह इस प्रकार की है। गजेंद्र विचार करने लगे कि माम आतुरं इमे गजाः मोचितुं न प्रभवन्ति। माम आतुरं, इस सरोवर में ग्राह से ग्रस्त होकर मैं आतुर हूँ, मैं बहुत दुख में हूँ, व्याकुल हूँ, और ये जो गज है, हाथियों के समूह, ये मेरे ज्ञाती हैं, मेरे स्वजन हैं, और अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्नेह के साथ हमें ग्राह के फंदे से छुड़ाना चाहते हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, परंतु ये हमें मोचितुम न प्रभवंती, ये मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो फिर कुतः करीय, तो फिर हथिनिया कैसे मुझे मुक्त कर सकती है। ग्राहेण पाशेन विधातु रावृत, वास्तव में मैं ग्राह के पाश से आवृत हूँ, ग्राह के बंधन में हूँ। यह ग्राह का बंधन नहीं, वास्तव में विधातु पाशेन, विधाता का पाश है, बंधन है। अतः अपि अहम चतम यामि परम परायण, अब मैं भी परम परायण, जो पराणाम ब्रह्मादिनाम अपि परायणम तम शरणम यामि, जो प्रभु समस्त देवताओं के, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव आदि के भी शरण है, उन्हीं की मैं शरण लूंगा। अहम अपि शब्द का यह अर्थ है, गजेंद्र जी ये कहते हैं, यद्यपि मैं पशु हूँ और पशु होने के कारण मैं अज्ञ हूँ, फिर भी भगवान की कृपा से मुझे ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है, तो मैं उनकी शरण लूंगा, शरण ले रहा हूँ। अहम चतम जानी परम्परायण, परम्परायणम पर आयणम पराणम आयणम शरण, तो जो समस्त जीवों के शरण है, और यहाँ तक कि पराणम ब्रह्मा आदि देवताओं को भी शरण देते हैं, भगवान ही रक्षक हैं, तो वही प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। अब मैं किसी पर भरोसा न करके, किसी पर विश्वास न करके परम प्रभु श्री भगवान की शरण ले रहा हूँ। तो इस पर एक प्रश्न हो सकता है, कोसौ यम शरणम जाति तत्रा, जिनकी शरण आप ले रहे हो वे कौन हैं, उनके विषय में जानते हो, ये प्रश्न हो रहा है। कह असौ यम शरणम जाति, इसी पर कहते हैं, यह कश्चनेश यह ईश्वर, एक ईश्वर है, भगवान है, परम समर्थ है। कश्चन, कश्चन शब्द ऐसे ज्ञान होते हुए भी, जैसा आगे प्रकट होगा, गजेंद्र को ज्ञान है भगवान का, भगवान श्रीहरि विष्णु ही ईश्वर है, लेकिन यहाँ पर वे कह रहे हैं यह कश्चन ईश्वर, कोई ईश्वर है जो अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। भीतम प्रपन्नम परिपाति, जो व्यक्ति संसार बंधन से अथवा किसी प्रकार के संकट से भीत होकर डर कर उनकी शरण में आता है, प्रपन्न होता है, तो परिपाति ये रक्षा करते हैं, उस ईश्वर का, भगवान का स्वभाव मैं जानता हूँ। भीतम प्रपन्नम परिपाति, कैसे रक्षा करते हैं और क्यों भयभीत रहता है वह भक्त, वह शरणागत, बलिनः अंतक उर्गात प्रचंड वेगात अभिधावतो भृशम भीतम। काल सर्प से भयभीत होकर के जो व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अंतक एवं उरग, उरग का अर्थ होता है उर से, छाती से, पेट के बल चलने वाला, गमन करना, उरग सर्प को कहते। अंतक का अर्थ अंत कर देने वाला, काल मृत्यु, अंतक उरग। यह काल यह मृत्यु एक विशाल अजगर की तरह, जैसे एक विशाल अजगर ग्रस लेता है, किसी को खा जाता है, उसी तरह से सारा विश्व काल के अधीन है। काल भी सबको ग्रस्त किया है, अजगर धीरे धीरे ग्रसता है, एकाएक नहीं खा जाता है। इसी तरह से काल सबको धीरे धीरे ग्रसता है। 1999 बीत गया, अब 2000 ग्रस रहा है, और 2000 में भी यह कौन महीना है, ग्रहवा महीना हो गया ना, धीरे धीरे ग्रस रहा है। व्यक्ति अपने जोड़ता है, मेरी कितनी उम्र हुई, कितनी मेरी उम्र हुई, और मान लीजिए किसी की उम्र 58 बरस या 60 बरस की हुई, तो लगभग पूरा पूरा निगल चुका है, थोड़ा सा बाकी। जैसे किसी व्यक्ति को अजगर निगले और पूरा पैर की तरफ से निगल गया है शरीर, केवल सिर भर बचा हुआ है, और जैन ही सिर जाएगा उसके मुख के अंदर, तेहीं व्यक्ति मर जाए। तो जिसको पूरा पूरा अजगर ग्रस्त चुका है, ग्रस्ता आया है, तो अब सिर ग्रस्त करने में क्या देर है। लेकिन फिर भी इस काल सर्प से ग्रस्त व्यक्ति ही संसार में योजनाएं बनाता है, अभी मुझे ये करना है, ये देखना है, वो देखना है। बूढ़े बूढ़े लोगों के मन में तो और अधिक संकल्प विकल्प होते हैं, बहुत अधिक, जबकि पूरा शरीर ग्रस्त हो चुका है। अंतक उरग, काल सर्प, मृत्यु सर्प, सर्प की तरह ग्रस्त है, जल्दी पता नहीं चलता है कि इतना ग्रस लिया है। बारंबार ग्रस्तम कालाहिना जगत, श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार के शब्द आए। यह सारा विश्व काल रूपी सर्प के द्वारा ग्रस्त है। गजेंद्र जी कहते हैं कि यह काल एक सर्प की तरह है, अंतक उर्गा, ये सबका अंत कर देता है, इसीलिए इसको अंतक कहते हैं। अंतक का अंतम करोति सह अंतक, जो अंत कर दे सबका, नाश कर दे, इसको अंतक कहते। एक दिन सबका अंत हो जाएगा, कहीं भी कोई जन्म लिया है, कितना भी बड़ा पोजीशन पर हो, धनवान हो, सुंदर हो, विद्वान हो, लेकिन उसका अंत निश्चित। अब दुनिया में कहीं भी खोज कर पता लगा लीजिए, काल किसी को नहीं छोड़ा है। कोई छिप करके कहीं रह गया हो, भारत से भाग करके अमेरिका में चला गया हो तो वहां बच गया हो, या अमेरिका वाले इधर उधर गए हो बच गए हो, कोई नहीं बचा है। अगर किसी को इस पर विश्वास ना हो तो पता लगाइए, कहीं कोई बचा है, सबका अंत हो जाता है, इसलिए इसको अंतक कहते हैं मृत्यु। अंतक एक सर्प की तरह है, इस काल सर्प से, मृत्यु सर्प से भयभीत होकर के जो आपकी जो उस ईश्वर की शरण लेते हैं, वह ईश्वर उसकी रक्षा करता है। काल सर्प की विशेषता बता रहे हैं, बलिनः, सब पंचमी विभक्ति में बलिनः, वो बहुत बलवान। इस संसार में हम लोग देखते हैं एक से एक बलवान व्यक्ति, सुनते हैं एक बलवान व्यक्ति दूसरे को मार देता है, दूसरे को अधीन रखता है, बड़ा बड़ा युद्ध जीतता है, लेकिन अंत में देखा गया कि वो बलवान भी काल के सामने समाप्त हो गया। सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलि से। सहस बाहु, एक राजा था, उसकी 1000 बाहें थी,
भगवान दत्तात्रेय ने कृपा करके दिया था बाह उसको, 1000 बाह थी, 500 धनुष एक साथ चलाता था, और रावण को ऐसे पकड़ लिया था जैसे कोई किसी कीड़ा को पकड़ लिया, इतना बलवान हो। और रावण के 10 मुख थे और 20 भुजाएं थे। रावण इस अभिमान में रहता था कि कोई एक मस्तक काटेगा फिर भी 9 बचा रहेगा, और सब सदा सोचता था, बहुत अभिमानी था, बहुत बलवान भी था, लेकिन सहस बाहु दस बदन आज नृत बचे न काल बलिते, हम कर धन धाम सवारे अंत चले उछरी। खूब कहे हम है धन सवारे धाम सवारे, धाम तो सोने की लंका बना दिए। रावण के घर में सोने की ईंटें लगी थी और मसाला आदि क्या क्या लगा होगा, इतना सवारा लेकिन भगवान ने मार दिया चला गया। और हम लोग तो कौड़ी की झोपड़ी में रह रहे हैं फिर भी उतनी ही ममता है, ये विचार ही नहीं करते हैं कि एक दिन मर जाना है चले जाना है। तो काल सर्प से ग्रस्त हैं हम, यह बहुत बलवान है, इसके वेग के सामने कोई ठहर नहीं सकता है। अंतकुर्गात बलिना और प्रचंड वेगात का अर्थ है इसका पराक्रम प्रचंड है, पराक्रम प्रचंड है, या किसी भी तरह से अपने आघात को सफल कर ही लेता है। काल जब किसी को मारना चाहता है तो मार ही देता है, कभी कभी व्यक्तिगत रूप से किसी को मारता है और कभी कभी कलेक्टिव सामूहिक वध कर देता है, जैसे भूकंप हो जाना, महामारी फैलना, या वायुयान दुर्घटना हो जाती है, रेल दुर्घटना हो जाती है, और प्रलय काल में तो समस्त जनता एक साथ नष्ट कर दी जाती है। इसका बहुत बड़ा वेग है, प्रचंड वेग। और अभिधावत और भीषम, और यह काल सर्प बहुत जोर से दौड़ता है। बहुत जोर से दौड़ने का अर्थ यह है कि इसकी पहुंच सब जगह है, ब्रह्मांड का कोना कोना ये क्षण भर में पहुंचा हुआ, चलना नहीं पड़ता है इसको। देवता भी मर जाते हैं, दैत्य मर जाते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, मनुष्यों में भी पढ़े लिखे पंडित मर जाते हैं, मूर्ख मर जाते हैं, धनी गरीब स्त्री पुरुष सब काल के जाल में चले। इसलिए इसको विषम भावत बहुत दौड़ता है। ऐसे काल स्पर्श से अर्थात मृत्यु से भयभीत होकर के जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण लेता है उसकी रक्षा करते हैं। तो मैं भी अब उन्हीं की शरण में जा रहा हूं। इस बात से सिद्ध हुआ कि गजेंद्र जी केवल ग्राह के बंधन से ही नहीं छूटना चाहते थे, वे जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते थे, उनकी इच्छा हो गई। इसका अर्थ है कि जो काल सर्प से मुक्त कर सकते हैं वे एक ग्राह के बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर देंगे, ये कौन बड़ी बात है। काल सर्प से भगवान रक्षा करते। यह कश्चनेश बलिनंत कोरगात प्रचंड वेगात विधावतो भृशम भीतम प्रपन्नम परिपाति गर्भयात मृत्यु प्रभाव चरणम तमीमहि। तो संसार सर्प से भयभीत अपने शरणागत की रक्षा में प्रभु करते हैं, और उनके भय से, भगवान के भय से मृत्यु सबको मारता है। मृत्यु को ड्यूटी दिया है भगवान ने, तुमको मारना ही पड़ेगा। जब भयात मृत्यु प्रभावती, प्रधावती का अर्थ है कि सर्वत्र मृत्यु मार देता है सबको, तो मृत्यु भगवान के भय से मार रहा है। श्रीपतिधर स्वामी जी यहाँ श्रुति से उल्लेख करते हैं, भिषास्मद वातः पवते, उस भयावह ईश्वर के भय से हवा बहती है, उसी के भय से सूर्य उगता है, उसी के भय से अग्नि जलता है और इंद्र वर्षा करता है, और मृत्यु धावती पंचम, और पांचवें देवता मृत्यु भावत मारते हैं सब। सबको आदेश है भगवान विष्णु का, तुमको वर्षा करना है, तुमको ताप देना है, हवा को बहाना है, और मृत्यु को आदेश है कि तुमको मारना पड़ेगा। मृत्यु चयन से नहीं बैठा है, उसको मारना ही पड़ेगा सबको दौड़ दौड़ कर। इसलिए प्रभावती शब्द का प्रयोग किया गया। वो सब कर्म बंधन और रिकॉर्ड देख देख कर मृत्यु दौड़ता है जाकर मारता है। प्रभावती का यथाशुद्ध अर्थ हमें नहीं ले लेना चाहिए कि जमराज जी अब अपने ऑफिस से दौड़ दौड़ करके मारते हैं। मृत्यु की पहुंच सर्वत्र है और उसके ऊपर भगवान का नियंत्रण है, कमांड है, मारना ही पड़ेगा, इसलिए कोई बच नहीं सकता। तो मृत्यु भी जिनसे विनियुक्त होकर के काम करता है उन्हीं प्रभु की मैं शरण ले रहा हूं। अरणम तम ई मही, ई मही का अर्थ है ब्रजे म, मैं भगवान की शरण ले रहा हूं। यह बुद्धि आई। देखिए उस विषम दशा में जबकि एक पैर ग्रह पकड़ा है और जल के भीतर गजेंद्र है, 1000 बरस तक युद्ध कर चुके हैं, पर उस दशा में भी भगवान का भजन कर रहे हैं। आज के लोगों को यदि सिखाया जाए कि आप भी कुछ माला जपिए, भजन कीजिए, तो कहते हैं वो इतना बिजी है, इतना काम धंधा है, समय नहीं। और गजेंद्र की भी दशा देखिए, इतना थका हुआ व्यक्ति भी पैर पकड़ा गया है फिर भी भगवान का भजन चालू किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब विवेक हो उसी समय भजन कर देना, चालू कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब काम धंधा से फुर्सत हो जाएगी। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, समय निकालना पड़ेगा। और कोई दूसरा छुट्टी नहीं देगा। परिवार के लोग कभी नहीं कहेंगे कि अब आप बहुत कमाए, हमारे पोषण किए, अब आप भजन कीजिए, आराम कीजिए, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। और फुर्सत भी देंगे तो कहेंगे कि आप यहाँ घर पर बैठे रहिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भजन करने की छूट नहीं देंगे कहीं भी, स्वयं फुर्सत निकालना है। और फुर्सत मिले या न मिले, हम लोग काल सर्प से ग्रस्त हैं, बहुत संकट में हैं। भगवान का भजन चालू करना चाहिए, पुकारना चाहिए भगवान को, जैसे गजेंद्र जी कर रहे हैं। उस विषम स्थिति में वे पुकार रहे हैं भगवान को, कीर्तन कर रहे हैं। सीखने लायक बात। यहाँ तो एक बार थोड़ा सा बुखार आ जाए तो आह आह करते हैं, माला कहाँ की कहाँ रखी रहती है। जिस दिन कोई पैर पकड़ करके खींचे पानी में, उस समय कहां से भगवान का भजन करेंगे। ये गजेंद्र का अधिकार, ग्राह पैर खींच रहा है अथाह जल की ओर, लेकिन फिर भी वे भगवान का भजन कर रहे हैं। इसी को निष्ठा और विवेक कहते, भगवान के भजन में शुद्ध बुद्धि। तो कहते मैं उनकी शरण ले रहा हूं। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राजन्मन्यं शिक्षितं। एवं व्यवसिता, व्यवसाय का अर्थ निर्णय, व्यवसिता का अर्थ कृत निर्णय। इस प्रकार गजेंद्र जी ने निर्णय किया कि हम अब भगवान की शरण में जाएंगे, अब हम स्वयं जोर नहीं लगाएंगे इसे बचने के लिए, और न तो इनकी आशा रखेंगे अपने परिवार के गजेंद्रों की, पत्नियों की। अब मैं भगवान की शरण ले रहा हूँ। यह जो निर्णय था यही सुंदर निर्णय था। एवं व्यवस्थित, इस प्रकार का निर्णय करके और अपने मन को हृदय में बुद्धि द्वारा उन्होंने समाधान सम्यक रख दिया, अर्थात सब ओर से चिंतन हटा करके सबसे पहले उन्होंने अपने मन को हृदय में केंद्रित किया, क्योंकि हृदय में भगवान रहते हैं। सर्वस्व चाहन हृदय सन्निविष्ट, जो प्रभु अपने धाम में रहते हैं या सृष्टि के कण कण में रहते हैं, गजेंद्र के सबसे निकट उनके हृदय में रहते हैं। हम सबके हृदय में वास्तव में भगवान है। हमने तो व्यवहार में बच्चों को भी देखा है, अगर कोई बच्चा कोई बात कह रहा है तो दूसरा बच्चा कहता है कि छाती पर हाथ रखकर बोलो, तो इसका मतलब भगवान यहाँ है और छू करके बोलो, सख्त बोलना है। तो छाती पर हाथ रखकर कोई बच्चा झूठ नहीं बोलता है, लेकिन भगवान का स्पर्श यहाँ पर होता है। भगवान यहाँ है ही, मंदिर में है कि नहीं है कुछ कहा नहीं जा सकता वास्तव में, लेकिन समस्त जीवों के हृदय में तो वे है ही, इसमें तो संदेह नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति, तिष्ठति वो रहते ही। आजकल लोग मंदिरों में खूब ओम जय जगदीश हरे करते हैं और किसी जीव का सम्मान नहीं करते। अरे कोई आ रहे व्यक्ति को उसको प्रसाद देना चाहिए, सुंदर वचन देना चाहिए, तो कुछ नहीं। ठाकुर जी को भोग लगा लगा करके पा रहे हैं और बाकी आने वालों को कुछ नहीं दे, तिरस्कार करते। तो ऐसी भक्ति से भगवान थोड़े रिझते हैं, ऐसे पेटू भक्तों से भगवान बहुत रंज होते हैं। भगवान सबके हृदय में है, यह सनातन भू सत्य। इसलिए जो जीव है वो भगवान के सचल मंदिर है, घूमता फिरता मोबाइल मंदिर है, और देखते हैं किसी जीव को प्रणाम करना चाहिए उसके हृदय में भगवान रहते हैं। इसलिए हमारी सनातन परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति किसी को कहता है प्रणाम तो वो भी कहता है प्रणाम। जानते हैं इसका क्या विज्ञान है? एक व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे हृदय में रहने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, तो वो कहता है तुम्हारे हृदय में रहने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। यह अर्थ है। और जो व्यक्ति प्रणाम लेता रहता है प्रणाम कभी लौटाता नहीं, इसका मतलब है कि वह देहाभिमानी है। वो जानता है कि हमारे देह को प्रणाम किया जा रहा है। देह को क्या प्रणाम करना है? इसमें चाम है, हड्डी है, मल मूत्र, केश, नख, यही अलग अलग करके रख देने तो इसको कौन प्रणाम करेगा बताइए? चाम उतार करके किनारे रख दिया जाए तो कोई इसको प्रणाम करेगा? या मल मूत्र एक तरफ बाकेट में रख दिया जाए कोई प्रणाम करेगा? या हड्डी, देह को प्रणाम नहीं किया जाता है, देह में स्थित श्री भगवान को प्रणाम किया जाता है। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत में है जब दक्ष प्रजापति को भगवान शिव ने प्रणाम नहीं किया तो उनकी पत्नी पूछने लगे कि जब ससुर लगेंगे तो आपको प्रणाम करना चाहिए, ऐसा क्यों किए आप नहीं किए? भगवान शिव कहते हैं कि मैं हर काम को प्रणाम नहीं करता हूँ, सबके शरीर में रहने वाले भगवान कृष्ण को, वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं क्यों करूं किसी को दूसरे को प्रणाम? तो यह प्रणाम कर रहा गजेंद्र अपने मन को सर्वप्रथम हृदय में रखे जहां भगवान रहते। वास्तव में जीव के निकटतम भगवान है सबसे निकट अवस्थिति। कैसे मन को रख सके हृदय में? बुद्धिया, बुद्धि द्वारा। इस प्रकार का सुंदर विचार उनके मन में उदित हुआ, उस बुद्धि से उन्होंने मन को रख दिया भगवान में, हृदय में, और चित्त को एकाग्र करके, और जगात परमम जात्यम, परमम जात्यम जप्यम स्तोत्रम, जो बहुत ही श्रेष्ठ स्तोत्र है भगवान के गुणों से भरपूर, भगवान के गुणों का वर्णन करने वाला, इसलिए उसको परमम शब्द कहा जा रहा है। सर्वश्रेष्ठतम स्तोत्र जजाप पढ़ने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। ईश्वर महाराज परीक्षित ने कहा कि ये स्तुति कहाँ सीख लिए? हाथी के शरीर में ये संस्कृत के स्तोत्र कहाँ से पढ़ लिए? तो कहते हैं प्राग जन्मनी अनुशिक्षितम, प्राग जन्मनी इस हाथी शरीर के प्राग पूर्व इंद्रदुम्न संगे, जब इंद्रदुम्न नाम के राजा थे उस समय इन्होंने ये अभ्यास किया। तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि देखिए, इस जन्म में जो हम स्तोत्र याद करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और कदाचित यदि हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सके, इस जन्म का सारा यश, सारी तैयारी दूसरे जन्म में जन्म की तैयारी मिलती है भगवान द्वारा। पूर्व जन्म में याद किया हुआ स्तोत्र हाथी के शरीर में याद आ गया, इसलिए भक्ति को अव्यय कहते हैं। नेहाभिकमना सुप्रत्यवाय न विद्यते, स्वल्प मत्स्य धर्म से प्रायते महत्व गया, भक्ति में थोड़ा भी कोई विकास किया है, थोड़ा भी किया है, तो भक्ति का फल अक्षय होता है, फिर नए सिरे से नहीं करना पड़ता है। जैसे कुछ भक्ति कोई किया, उसके बाद विषय का अभिनिवेश हो गया, चाहे मृत्यु हो गई, तो इस जन्म में जो किया है उतना जेव करते हैं बना रहेगा। मान लीजिए कोई 10% किया तो दूसरे जन्म में वो 11% चालू करेगा, एक से नहीं। यही भगवान की भक्ति का अमोघ प्रभाव। तो गजेंद्र पूर्व जन्म में जो स्तोत्र सीखे थे उसको जपने लगे। ये भगवान की कृपा देखिए। वो कथा चौथे अध्याय में आएगी, किस प्रकार उन्होंने वो स्तोत्र जपा था, किस प्रकार भक्ति किए थे। तो हाथी के देह में स्मरण आ गया, प्राग जन्मनी अनुशिक्षितम। शिक्षितम शब्द में अनुशब्द लगा है, पूर्व जन्म में उन्होंने निरंतर इसका जप किया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्राग जन्मनी अनुशिक्षितम, बहुत सुंदर शब्द है। इस जन्म में तो हाथी थे, भगवान का कोई स्मरण नहीं। जैसा आपने सुना कि परिवार में कितना आसक्त थे, स्नान करा रहे थे, पानी पिला रहे थे, कुछ भी हो लेकिन पूर्व के भक्त थे, किए स्मरण हो गया, आ गया स्मरण। इसलिए आज जो भक्त बन रहे हैं और पहले के जो भक्त हैं उनमें बहुत अंतर है। पूर्व के भक्तों का बहुत आदर करना चाहिए, क्योंकि बहुत काल तक जप किए हैं, बहुत काल तक भागवत पढ़े हैं, सुने हैं, भगवान को प्रणाम किए हैं, कई हजार प्रणाम उनका हो गया होगा, है ना। तो जो लोग माला लेते हैं नया नया, उन लोगों को बहुत नम्र रहना चाहिए कि हम तो बिल्कुल नया चालू किए हैं, हम पर कृपा कीजिए। पुराण बहुत इकट्ठा हो जाता है बहुत दिन से भक्ति करते करते। और मान लीजिए पहले का भक्त है, बहुत भजन किया है, और आज अकस्मात यदि वो जप नहीं करता है या मंगला आरती में नहीं आया, तो ये मत अवहेलना कीजिए कि वो ये तो कुछ नहीं कर रहा है, उसका स्टॉक बहुत है। जैसे मान लीजिए पहले व्यापार किया हुआ व्यक्ति बहुत जमा कर चुका है, बहुत कमा चुका है, और आज कुछ नहीं कर रहा है, तो नया नया व्यापार चालू करने वाला कह रहे तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत करके रखा हुआ है, तो बहुत बड़ा स्टॉक। प्राग जन्मनी अनुशिक्षित, पूर्व के भक्तों का बहुत आदर करना चाहिए, परंतु पूर्व के भक्तों को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हम बहुत कर चुके हैं इसलिए अब आराम करें, अब क्या करना है। यह भी ऐसा ग्राह ने चरण पकड़ लिया है, इसलिए मैं शरीर से प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। गजेंद्र चाहते थे कि साष्टांग लोट करके प्रणाम करें भगवान को, लेकिन कहते हैं कि मैं नमस्कार का ध्यान कर रहा हूँ, अर्थात ध्यान में मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मन को प्रणाम कर रहा हूँ। और शरीर की ऐसी दुर्दशा हुई है कि शरीर झुक नहीं पाएगा, तो पैर पकड़कर ग्रह खींच रहा है तो प्रणाम कैसे कर पाएंगे। ग्रह गृह तत्व काय प्रणति असत्य, काय प्रणति शरीर से प्रणाम असंभव है उस स्थान पर, इसलिए मैं नमस्कार का ध्यान कर रहा हूँ। यह भी एक भक्ति है, ध्यान में भगवान की सेवा करना, उसको मानसिक सेवा कहते, प्रणाम करना, पंखा झलना, भगवान को कुछ भोग लगाना, गीत सुनाना, और कभी कभी तो यह मानसिक सेवा बाहरी सेवा से भी बढ़ करके होती है, क्योंकि इसमें मन लगा रहता है। तो गजेंद्र जी सबसे पहला वाक्य बोल रहे हैं कि मैं परम पुरुष भगवान के प्रति मन से प्रणाम कर रहा, नमः का सिद्धांत कहते नमन अभिधिमहि ध्यायम केवल, केवल प्रणाम, केवल मानसिक प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि शरीर से नहीं कर पाऊंगा, शरीर फंसा हुआ है।
नमो भगवते तस्मै जपये तत्सिदात्मकं पुरुषाया विधिजाया परेशाया विधिमहि। नमः के साथ अभिधीमहि शब्द लगा हुआ है, क्योंकि भगवान को हमेशा चतुर्थी विभक्ति में रखा गया। नमः अभिधीमहि, अभिधीमहि शब्द नमः के लिए नमस्कार का ध्यान कर रहा है। स्वस्य तद्ज्ञानं भावयति विषिणस्ति। यदि कोई पूछे कि आप कैसे प्रभु का नमस्कार कर रहे हैं, उनके विषय में जानते हो, तो अपने भगवान के प्रति अपने भीतर ज्ञान की संभावना करते हुए कहते हैं, हाँ हमें कुछ ज्ञान है उन प्रभु का, उनका कुछ पता है हमें कैसे हैं। पहला विशेषण दे रहे हैं भगवते, जो छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। सुंदरता ऐश्वर्य से समग्र से दीर्घ से जस्य ज्ञान वैराग्य से स्वर्णम भव उत्तिंगन है। छह ऐश्वर्य, इन छह ऐश्वर्यों से जो परिपूर्ण हैं, इन्हें भगवान कहते हैं। मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। और विशेषण दे रहे हैं जत एतद् चिदात्मकम्। जत जस्मात्, जिस प्रभु से एतद् देहादि चिदात्मकम् चेतनम् भवति। यह संपूर्ण विश्व व्यक्ति के देह से लेकर के पूरा ब्रह्मांड तक जड़ है, निश्चेतन है, लेकिन भगवान की उपस्थिति से ही इसमें चेतना आती है। जत जस्मात् एतद् देहादि चिदात्मकम् भवति चेतनम् भवति तस्मै नमः। जिस प्रभु की चेतना से जगत चेतनीभूत होता है। येन चेतयते विश्वम् तदुक्तम्, पाल कहा गया है, भगवान चेतना देते हैं। इस संसार में जो भी आनंद है, चेतना है, खुशहाली है, ये भगवान के कारण है, नहीं तो यह जगत बिल्कुल मरा हुआ है। जैसे एक मृतक शरीर में और एक जीवित व्यक्ति में आप अंतर करके देखिए कितना भारी अंतर। एक जीवित शरीर है, जीवित शरीर में व्यक्ति बोलता है, खाता है, चलता है, हंसता है, गाता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, काम करता है, लेकिन वही व्यक्ति जब चेतना शून्य हो जाता है, उस समय न तो बोल सकता है, न चल सकता है, न इशारा कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरे जो जीवित व्यक्ति हैं, उस मृतक देह को छूने की तो बात दूर रही, देखना भी नहीं चाहते। वही शरीर जब चेतना से युक्त था, तो इसको अनेक संबोधन में व्यक्ति संबोधित करता था, चाहे मामा, काका, चाचा, भाई, पत्नी, पति, कुछ भी कहे, लेकिन जो ही चेतना निकल जाती है, उस शरीर को व्यक्ति देखना भी नहीं चाहता, बल्कि मुख खुला रहता है तो आदमी कह देता है, चादर ओढ़ा दो, कफन ओढ़ा दो, क्यों खुला छोड़े, किस चीज की कमी हो गई। भगवान उस शरीर को छोड़कर चले गए, एक तो ये अर्थ, अथवा आत्मा की उपस्थिति, माने आत्मा की अनुपस्थिति के कारण ऐसा हुआ। तो आत्मा क्या है? आत्मा भी तो भगवान का ही एक छोटा सा अंश है, ममई अंश जी लोक जी भूता सनातन। तो भगवान का एक बहुत सूक्ष्म अंश आकर के इस शरीर को चेतना देता है। और इस आत्मा का आकार बताया गया है शास्त्रों में, केश के अग्रभाग को लेकर के यदि उसके 100 भाग किए गए, जो कि असंभव है, केश का अग्रभाग इतना सूक्ष्म होता है कि उसके 2 टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। कि 2 टुकड़े करेंगे तो उसी को अग्रभाग माना जाएगा, उसके 2 भाग नहीं किए जा सकते। लेकिन शास्त्र कहता है कि किसी केश के अग्रभाग को लेकर के और उसके 100 विभाग किए गए, और फिर 1 टुकड़े को लेकर के उसके 100 भाग किए गए, तो इतना सूक्ष्म जीव है। तो भगवान का बहुत ही बारीक, बहुत सूक्ष्म आत्मा नामक अंश इस शरीर में है, तो इस शरीर को हिला रहा है। इसमें स्मृति शक्ति बनी है, चेतना आ रहे हैं, हिल रहा है शरीर, काम कर रहा है। तो जब तक ये तब चिदात्मक जिन भी शरीरों में जो भी चेतना है, ज्ञान है, आनंद की अनुभूति है या जो भी फीलिंग है, सब श्री कृष्ण के कारण है, भगवान के कारण। जता ये तब चिदात्मक भगवत, और नहीं तो भगवान के बिना सारा संसार मरा हुआ है, निश्चेतन है, किसी काम का नहीं। यही समझ लेना चाहिए, जो व्यक्ति भगवान से संपर्क नहीं रखा है वो जीवित तो है लेकिन जीवित तो भूत है, मुर्दा है। ऐसे मरा हुआ व्यक्ति पड़ा रहे वो ठीक है, लेकिन कहीं वो जी जाए तो और भयानक होगा, उसको लोग भूत कहते हैं और भाग जाएंगे। मरा हुआ व्यक्ति यदि बोलने लगे तो या सांस चलने लगे तो आदमी पटक करके भाग जाए, ये भूत हो गए। कहने के लिए सभी प्राणी जी रहे खास करके मनुष्य, लेकिन भगवान से भी प्यार नहीं है, भगवान से यदि स्नेह नहीं है तो वह जीवन मरा हुआ। जिनहर भगत हृदय महान जीवत सौ समान कई प्राणी, जीवत सौ जीवित लाश। और वैज्ञानिक ढंग से सिद्धांत तौर पर देखा जाए तो भगवान ही उस जगत में चेतना दे रहे हैं। कोई पेड़ पौधा झाड़ बढ़ रहा है, हरा भरा है, इसलिए कि भगवान का एक अंश उसमें विद्यमान, और स्मृति ज्ञान आदि मिल रहा है, इसलिए कि परमात्मा भी स्वयं बैठे हैं हृदय में। जीव के उपस्थिति कभी कुछ नहीं हो सकता है जब तक भगवान हृदय में न उपस्थित। जता एक चिदात्मकम भवति, अथवा एकद चिदात्मकम भवति, एकद का अर्थ है या जड़ विश्व या जड़ शरीर। भगवान की ऐसी, भगवान की ऐसी शक्ति है, भगवान का ऐसा प्रभाव है कि कोई व्यक्ति यदि इनका भजन करने लगे, इनका चिंतन करने लगे तो यही शरीर स्पिरिचुअल हो जाता है, चिदात्मकम भवति। ऐसा देखा गया गजेंद्र भी चिदात्मक हो जाएंगे, वही भगवान आकर के गजेंद्र का स्पर्श करेंगे, शरण पकड़ करके खींचेंगे सरोवर से बाहर, इसी समय गजेंद्र चतुर्भुज रूप में परिणत हो गए। इनका शरीर नहीं गिरा, हाथी का शरीर गिरा नहीं इधर उधर, वो हाथी का प्राकृतिक शरीर ही बिल्कुल स्पिरिचुअल चिन्मय स्वरूप हो गया चतुर्भुज। गता एक चिदात्मक भवती, भगवान जब छू देते हैं, भगवान कृपा करते हैं तो जड़ वस्तु भी स्प्रीत हो जाती है, ये भगवान का सहज प्रभाव। जता ये तक शुद्धात्मकम हो, कोई भी वस्तु जिसका संबंध भगवान से हो जाता है वह चिन्मय हो जाती है। जैसे कोई वस्तु हम खाते हैं, वही भात, वही रोटी, वही सब्जी, आप ऐसे बिना भगवान को अर्पित करके खाइए तो जड़ वस्तु रहेगी, माया बंधन का कारण बनेगी। लेकिन यही पदार्थ जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वह स्पिरिचुअल हो जाता है, वह चिन्मय हो जाता है, इसे प्रसाद कहा जाता है। और उस चिन्मय प्रसाद को जो व्यक्ति खाता है तो धीरे धीरे वह अभी शुद्ध धरातल पर हो जाता है, चिन्मय हो जाता है, उसका सोचना, उसका बोलना और उसका शरीर सब कुछ चिन्मय हो जाता है। इसीलिए वैष्णवों में जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए, वैष्णव जाति बुद्धि, जैसे सामान्य मनुष्य में जाति बुद्धि होती है, यह उस जात का है, वह उस जात का है, वैसा है वैसा है, काला है गोरा है लंगड़ा है लूढ़ा है ये है वो है। लेकिन यदि वही शरीर वही व्यक्ति भगवान विष्णु को समर्पण करता है, भगवान का हो जाता है, तब उसमें जाति बुद्धि करना एक बहुत बड़ा अपराध। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का है, भगवान हरि का ऐसा स्वभाव है, उनका प्रभाव है, उनसे संपर्क जुड़ते ही प्राकृत मान्यताएं नष्ट हो जाती है, वह व्यक्ति अप्राकृत धरातल पर होता है। रामायण में एक कथा है कि धीवरों के मल्लाहों के निषादों के एक राजा थे, और भगवान श्री राम जब वन में जा रहे थे तो उन्होंने बहुत स्वागत किया भगवान का, मित्रता किए, सेवा किए। भगवान राम उनका बहुत आदर किया और उनको अपना सखा कहते थे, मित्र कहते। बाद में भरत जी समस्त अयोध्या वासियों के साथ जा रहे थे भगवान को मनाने के लिए, लौटाने के लिए अयोध्या के राज्य पर। तो जब जा रहे थे तो उनके साथ गुरु वशिष्ठ देव भी जा रहे थे। तो गुरु वशिष्ठ जी के विषय में कहा गया है कि वो ब्राह्मणों में सिरमौर हैं, बहुत पवित्र और जाति की दृष्टि से निषाद राज एक हीन जाति के, ऐसा विश्राम ही कहे हैं कि मैं उस जाति का हूँ कि उसकी छाया यदि किसी पर पड़ जाए, ऐसे चल रहा है वो व्यक्ति और छाया पड़ गई तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो जाकर के स्नान करे तब शुद्ध हो जाए। जास छाह ले सिंचा, जिसका छाह पड़ने पर सिंचाई करनी चाहिए, मतलब स्नान करना चाहिए। लेकिन जब गुरु वशिष्ठ जी पहुंचे श्रृंगवेर पे उनके यहाँ, तो उन्होंने निषाद राज को प्रणाम करते हुए देह सड़कियां पवार में उठा करके रख ली। कोई वशिष्ठ संग बड़ जगमान, वशिष्ठ जी से बड़ा कौन है संसार में। लेकिन वे निषाद राज को ऐसे हृदय से लगा लिए जैसे सबसे प्रिय व्यक्ति से मिल रहे। ईश्वर निषाद राज जी कहते हैं कि राम किन है अपन जब ही पे भवन भुवन भूषण तब ही। राम ने मुझे जब से अपना किया उस समय में इस विश्व में भूषण हो गया, सब बहुत श्रेष्ठ हो गए। भगवान के अपनाने से, भगवान से जिनका संबंध हो गया है वे महान हो गए। श्रीमद् भागवतम में तो लिखा गया है कि भगवान के चरण भवन को गंगा जी को मस्तक पर रख करके शिव जी सिंह जी हो गए। यही तो गंगा के बिना उस नंगा को कौन पूछता है, सब गंगा न कपड़ा पहने हैं न कुछ है ऐसे। तो गंगा जी शिव पर आ गई है इसीलिए शिव जी शिव जी हो गए, शिव शिव जी। भगवान कपिल देव कह रहे हैं शिव जी शिव जी हो गए, नहीं तो कोई कीमत नहीं होती। भगवान के चरण जल को धारण करने के बाद उनकी महिमा बढ़ गई बहुत अच्छा। और हनुमान जी, इस बानर को कौन पूछता है राम का भक्त नहीं होता बताई। अब तो जहाँ देखिए वहाँ हनुमान जी को खड़ा किए, इतना पूज्य हो गया हनुमान जी। क्यों? क्योंकि भगवान राम के सेवक बने। जो राम से यदि कनेक्शन न रहे तो ऐसे ऐसे बानर पे रोज घूम रहे हैं, कौन पूछता है। और अब तो लोग ले जा करके उस बानर को खिला खिला कर प्रसाद बनाकर बांटते हैं, ये हनुमान जी का प्रसाद बांट दो। कोई क्या कभी सोचा है कि भाई बानर का खाया हुआ हम तो खाएंगे? कोई ऐसा नहीं सोचता है, तो परम पवित्र हो जाता है हनुमान जी का प्रसाद खा। बल्कि अन्य जितने बानर हैं ये भी हनुमान जी के कारण प्रशंसनीय हो गए। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बिहार में छोटे छोटे बच्चे जब बानरों को देखते हैं तो यही कहते हैं हनुमान जी आए, हनुमान जी आए, ऐसा कहते हैं। बानर नहीं कहते हैं। कभी अभी कार्तिक में एक लड़का आया था हमारे गांव से, वो हमसे कहता है ये सैकड़ों हनुमान जी आए बनेगा। ऐसा लगे सैकड़ों हनुमान जी आए, एक हनुमान जी के चलते अन्य बानर भी हनुमान जी कहे जा रहे हैं। और हनुमान जी क्यों हो गए कि भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी विभीषण से कह रहे हैं कि असमय अधम सखा सुन मोहि पर रघ दे किन्हीं कृपा सुनिर गुण भरे दिले सुनने, मेरे जैसे अधम पर भी वे कृपा किए तो आप पर क्यों नहीं करेंगे। आप तो जाति के ब्राह्मण हैं, आप तो महान हैं, अब चलिए छोड़िए लंका शरण में आइए, आप पर कृपा करेंगे। हनुमान जी प्रचार कर रहे थे भक्ति का लंका में, और वहां से एक विभूति लाए भीषण जी, हम पर भी कृपा किए फिर आप पर क्यों नहीं करेंगे। हनुमान जी अपनी निष्ठा का वर्णन करते हुए कहते हैं दैन्य बस कि प्राप्त लो जो नाम हमारा ताजिन ताहिन मिले आहारा। मैं इतना अधम व्यक्ति हूँ कि अगर सवेरे कोई हमारा नाम ले ले तो दिन भर भोजन में असर नहीं होगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा। मैं इतना नीच व्यक्ति, ये तो केवल उनके अपनी बात है, भक्ति के कारण दैन्य व्रत कह रहे हैं। हनुमान जी का नाम ले लेकर के तो कितने लोग खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं। तो भगवान के संग से जड़ वस्तु भी चिन्ह हो जाती है। जगेंद्र जी पहली विशेषता भगवान जी बता रहे, जता एत चिदात्मक, और जो थे तत्व विश्व तत्व होते हुए पुरुषाय, पुरुष कारणत्व में प्रविष्ट है, क्योंकि भगवान पुरुष, पुरुष का अर्थ होता है कि पूर्वों में स्वयं करते, कैसे वो चेतना देते हैं, जिन्हें चिदात्मकम भवति, कहीं भी किसी वस्तु में चेतना कैसे आ जाती है, क्योंकि चेतना का कारण है पुरुष, जो समस्त पूर्वों में मनुष्य देह में या दूसरे देह में ब्रह्मांड में क्षीर समुद्र में या कायम समुद्र में स्वयं करते हैं। तो पुरियां बहुत हैं, जितने जीव हैं उतनी पुरियां हैं, जितने ब्रह्मांड हैं उतनी पुरियां, और प्रकृति के अंतर जाने कारणों तक सही भगवान, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया पुरुषाय, पुरुषु कारणत्व में प्रविष्टाय, समस्त देह के भीतर कारण के रूप में भगवान प्रविष्ट है और उन्हीं से चेतना आती है, भगवान चेतना देते हैं। तो ये चाहे तो जड़ पदार्थ को भी तीर चिन्ह कर देंगे, जैसे रामचरित मानस में एक दोहा है कि जड़ ही खड़ाई शैतान, जड़ को भगवान चिन्ह कर देंगे और चिन्ह को चाहे तो जड़ कर देंगे। ये भगवान का प्रभाव है, गजेंद्र इस बात को बोल रहे हैं। तो भगवान सबके हृदय में शयन करते हैं, रहते हैं और वही चेतना देते हैं। तो इस तरह प्रश्न उठता है कि मनु प्रकृति पुरुषों कारण नीति प्रसिद्धम तत्र है, इस जगत में जो चेतना होती है या सृष्टि होती है, कोई वस्तु बनती है, कोई जन्म लेता है, तो उसमें कारण है प्रकृति ही और पुरुष, भगवान तो इसमें कारण है नहीं, प्रकृति पुरुष ही कारण, ये प्रसिद्ध बात है। तब कहते हैं आदि पुरुषाय, आदि ही प्रकृति, आदि बीज आया, आदि प्रकृति बीजम पुरुष तब रूपाय, जो प्रकृति है बहिरंगा प्रकृति, यह भी भगवान की शक्ति है। तो भगवान ही प्रकृति के रूप में है और पुरुष जीव चित्त कर उसके भी कारण भगवान है, इसलिए पुरुष स्तब रूपाय। आदि का अर्थ प्रकृति और बीज का अर्थ पुरुष, आदि बीज आया, आप ही आदि है और आप ही बीज है, आप ही प्रकृति है और आप ही पुरुष है, मैं आपके प्रणाम का ध्यान कर रहा हूँ। पृष्ठत्व की जीवित पर पंचम बार रहती, ये कहा जाता है भगवान हृदय में प्रविष्ट है सभी जीवों के, तो जीव भी तो सबके हृदय में है, तो भगवान में और जीव में भेद क्या रहा, भगवान भी सबके हृदय में है और जीव भी एक हृदय में है। तो यहाँ पर कहते हैं परेशाय, प्रविष्टत्व अति जीवित पर पंचम बार रहती, भगवान सबके हृदय में प्रविष्ट है लेकिन जीव की तरह परतंत्र नहीं है, जीव परतंत्र है भगवान स्वतंत्र है, इसी को कहने के लिए परेश आया कह रहे हैं। परेश आया, परेश सबसे बड़ा ईश्वर नियामक अथवा समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर परम ईश्वर आप है। तो भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी शरीर के विकारों से प्रभावित नहीं होते हैं या मानसिक विकारों से प्रभावित नहीं होते हैं, जीव प्रभावित होता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई जीव किसी शरीर में है और शरीर को ठंडा लगता है तो जीव भी प्रभावित होता है, वह अनुभव करता है कि हमको ठंडा लग रहा है, या शरीर पर हीट दिया जाए तो जीव अनुभव करता है कि हमको गर्मी मिल रही है, वो सटपटाने लगता है। शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जीव सटपटाने लगता है, लेकिन भगवान जो के आनंद में रहते हैं वे इस प्रभाव में नहीं आते हैं। कभी शरीर में भूख लगती है तो आत्मा छटपटाने लगता है, शरीर नहीं, शरीर नहीं छटपटाता है वास्तव में, आत्मा छटपटाता है क्योंकि शरीर को मैं मान लेता हूं। पर भगवान कभी भी शरीर को मैं नहीं मानते और न तो उसको मेरा मानते हैं, कुछ भी इसमें प्रभावित नहीं होते और केवल एक समष्टि व्यष्टि शरीर ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है भगवान का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि दूसरे दूसरे जो व्याकुल हो जाते हैं, रोते हैं, विलपते हैं, हर्षित होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पर भगवान तो अष्टप्रभु हृदय अशक्त अधिकारी सकल जीव जगदीन दुखारी, सब लोग दुख में रहते हैं वे तो अक्षत और अधिकारी है, जीव को परोक्ष पराणाम ईश है, परोक्ष ब्रह्मा आदि के ईश्वर या प्रकृति के नियामक, जीव प्रकृति के अधीन है, माया के अधीन है और माया भगवान के अधीन, भगवान स्वबस है और जीव माया के बस में है। ये सब भगवान और जीव में अंतर समझते चलने चाहिए। कभी कभी कुछ मूर्खता बस ऐसा सोच सकते हैं कि जब भगवान भी भीतर है हृदय में और जीव भी है तो जीव की तरह वे भी शरीर के विकारों से या मानसिक विकारों से प्रभावित होते होंगे, नहीं, कुछ ही प्रभावित नहीं, क्योंकि वो ईश्वर एक जगह रहने से क्या होगा। उपनिषद में कहा गया कि दो पक्षी इस देह वृक्ष पर रहते हैं तो उसमें एक फल को खाता है उस वृक्ष के, सुख दुख खट्टा मीठा पीता और सोचता है, मुह्यती सोच माना, एक भ्रम में रहता है, सोच में रहता है, दूसरा केवल देखता रहता है कि कैसे खा रहा है कैसे पी रहा है, वो नहीं खाता है। परमात्मा भगवान हृदय में बिल्कुल सुखमय स्थिति में रहता है, कोई देखते हुए साक्षी मात्र, वो नहीं खाते हैं, न पीते हैं, कुछ सोचते हैं, यही तक खाते पीट पीट करके लोग रोते हैं, लेकिन भगवान चुपचाप देखते रहते, उनको थोड़ा ही शोक नहीं होता है और न तो जीव के हर्ष से उनको हर्ष होता है, क्योंकि परेश जीवत पारतंत्र बारे परिष्ट बहुत सुंदर दिग्दर्शन है सुदर्शन जी का, क्यों उसके बाद यही शब्द दिया जा रहा है उसकी भावना करते हैं। तो भगवान सबके हृदय में है, ब्रह्मांड में है, क्षेत्र समुद्र में है, सर्वत्र है, लेकिन फिर भी संसार के दुख शोक या कोई भी विकार उनको प्रभावित नहीं कर पाते। अब भगवान के परम ऐश्वर्य का विवरण देते हुए नमस्कार कर रहा यावत समाप्ति, पूरा दूसरे श्लोक से लेकर जब तीसरे श्लोक से लेकर और जहाँ तक स्तोत्र पूरा हो रहा है वहाँ तक भगवान के परम ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। जस्मिन् इदं जतश्चेदं येनेदं यदं स्वयं यस्मात् परस्मात् परस्तं प्रतद्देशं भुवन। भगवान के परम ऐश्वर्य का वर्णन किया जा रहा है यहाँ से लेकर के आगे तक समाप्ति तक। इदं जस्मिन् यह विश्व जिसके भीतर है, जस्मिन् का अर्थ अधिष्ठान, यह संपूर्ण विश्व भगवान में स्थित है। इदं इदं कई बार लगा हुआ, जस्मिन् इदं जपश्च इदं, इस विश्व के उपादान कारण भगवान है, यह विश्व भगवान में ही है। येन इदं कर्त्रा जिसके द्वारा यह विश्व बनाया गया है, यहाँ तक कि जो स्वयं ही विश्व के रूप में है, जो अस्मा परस्मा च पर, जो इससे और परस्म जो परम से ही परे है, अर्थात जो अस्मात कार्यजात परस्मात कारणात् च पर, जो कार्य और कारण से भी परे हैं, तम प्रपद्य स्वयं भुवन, ऐसे स्वतः सिद्ध प्रभु को मैं समर्पण कर रहा हूँ, मैं उनकी शरण ले रहा हूँ। जस्मिन निदम जतश्चेदम जेमी दम या इदम स्वयं इदम 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 इदम, चार बार इदम शब्द का प्रयोग किया गया इस श्लोक में। इदम का कहता हुआ है, यह कैसे तात्पर्य क्या है, यह संपूर्ण विश्व केवल एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को इस तरह समझिए, एक ब्रह्मांड जो हम लोग देख रहे हैं बोला, जिसके भीतर सूर्य चंद्रमा अनंत तारे और पृथ्वी और नीचे भी तल अतल दूतल शीतल तलातल अभी लोक है, इन सबका समाहार समुच्चय को समेटे हुए एक अंड है, गोलक है, गोला, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। इसकी इसका व्यास कितना है, यदि इसके गोले को एक छोर से दूसरे छोर नापा जाए जिसको व्यास कहते हैं, आधा आधा टुकड़ा किया जाए, तो इसकी लंबाई है 50 करोड़ योजन। एक ब्रह्मांड 50 कोटि योजन, 50 करोड़ योजन, और एक योजन 8 माइल का होता है, कितने हुआ माइल के हिसाब से, ये चार अरब हुआ ना, 4 अरब माइल इसका व्यास हुआ। परिधि तो कहना ही नहीं, कितना परिधि हो जाए एक ब्रह्मांड। और ऐसे ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड पड़े हुए इस प्रकृति के भीतर, और एक ब्रह्मांड में 14 भुवन है, जौन बचे हुए हैं 14, और उनमें भी बहुत बहुत लोक हैं। एक एक लोक में बहुत बड़े बड़े नगर हैं, एक एक नगर में बहुत बड़े बड़े घर हैं, जीव जंतु भरे पड़े हैं, फिर एक एक घर में कितने कितने लोग और कितने कितने सामान पड़े हुए देख सकते हैं। सबके खाने के लिए, पहनने के लिए, बैठने के लिए, घूमने के लिए समान, पहले तो लोगों को ही नहीं गिना जा सकता, फिर उन लोगों में बसे हुए गांव और नगर को कोई कैसे गिन सकता है। इस ब्रह्मांड में लोगों की गिनती करना असंभव, रोके तो लोक में अनंत अनंत जश्नी निगम वही रचे हैं और उन्हीं के भीतर है, क्योंकि जब भगवान सृष्टि करना चाहे तो उनके अलावा कोई जगह नहीं था, काल नहीं था, न देश था, उनके अलावा कुछ है ही नहीं, वो रचेंगे कहें। हम लोग घर बनाना चाहेंगे, फैक्ट्री बनाना चाहेंगे, तो पहले साइट देखते हैं, अपने देह से अलग है ना, सब चीज अपने देह से अलग देखना पड़ता है, रसोई अलग, पूजा घर अलग, बाथरूम अलग, ऑफिस अलग, नहीं घर द्वार फील्ड सब अपने देह में जरा करके देखिए, तो नहीं भगवान के भीतर ही सारा है। इस श्लोक में पहला स्वर्ग वर्णन किया जा रहा है, जस्मिन इदम, जस्मिन सप्तमी एक वचन में है, जस्मिन भगवती इदम विश्वम वर्तते, जिनके भीतर ही सारा ब्रह्मांड है। अच्छा, एक अधिष्ठान हुए भगवान के भीतर ही अवस्थित, जतश्च इदम, और कहां से विश्व आया, इतने बड़े बड़े पहाड़, समुद्र, नदियां, अनंत लोक, ये सब आए कहां से, तो जत जस्मा उपादान, भगवान से सारा प्रकट हुआ, भगवान से सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई है और भगवान में ही टिकी, ठीक है भगवान से आई है, लेकिन इसका निर्माण कौन किया, जेन इदम, जेन कर्त्रा, भगवान ही इसके रचयिता है। किसी घर के निर्माण के विषय में आप जरा विचार कीजिए, वो घर टिका हुआ रहता है
अधिष्ठान पर घूमकर, जैसे हाल है, यह हाल है एक स्थान पर टिका हुआ है, इसको अधिष्ठान कहेंगे। जो भूमि है खंडेलवाल छत्रावास, यह है अधिष्ठान। भूमि पहले से है, मनाने वाले अपने देह से नहीं निकाले एक भी ईंट पत्थर कुछ भी, और अधिष्ठान वो अलग है, बनाने वाले सब अलग हैं, उनके देह पर भवन नहीं टिका है, तो अधिष्ठान है। और इसके बाद कुछ उपादान है, उपादान का अर्थ होता है मटेरियल, उपकरण, ये सब वस्तुएं आई कहाँ से? निश्चित है कि बनाने वालों के मुख से, पेट से सब वस्तुएं नहीं निकली, कहीं से ईंट आया होगा, पत्थर आया होगा, सीमेंट आया होगा, और सारी वस्तुएं लकड़ी वगैरह सब आए अलग से, और बनाने वाले भी लगभग भिन्न होंगे, मिस्त्री मजदूर वो भी अलग रहते हैं। तीन बात यहाँ देखिए, जस्वी युदम, जतस्वेदम, जेने दम, या युदम स्वयं, चौथी बात है। तो भगवान से ही सारी वस्तुएं निकली इस विश्व को बनाने के लिए, इसको उपादान कारण कहते हैं। जैसे कोई कुंभकार घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी लाता है, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, आग चाहिए, सुखाने के लिए हवा चाहिए, चाक चाहिए जिस पर घुमाता है बनाता है। तो मुख्य उपादान है मिट्टी, दूसरा है जल, तो मिट्टी उपादान है घड़ा बनाने के लिए। अगर मिट्टी नहीं है तो कुंभकार घड़ा नहीं बना सकता है। तो मिट्टी को कुंभकार घटकार वो अपने मुख से नहीं निकालता है, लेकिन भगवान जब विश्व बनाना चाहे तो अपने भीतर से सारा मटेरियल निकाल और भीतर निकाल बाहर नहीं किए, अपने भीतर ही रखे, वही अधिष्ठान है, वही उपादान है, और मिस्त्री भी वही है, जेन कर्त्रा, सेहर स्वामी जी यहाँ कर्त्रा, कर्ता भी वही। बल्कि ये कहिए कि यह एकदम स्वयं स्वयं भगवान ही विश्व के रूप में हो गए, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि भगवान के अलावा इसमें कुछ भी नहीं लगा है, कहीं का उपकरण नहीं लगा है, तो कहा जा सकता है कि विश्व भगवान है। जैसे किसी व्यक्ति में सामर्थ्य हो कि जमीन भी वही बन जाए और घर बनाने का उपकरण भी अपने मुंह से निकाल दे और स्वयं बना दे, तो लोग कहेंगे कि वो आदमी ही ऐसा हो गया है, वास्तव में कहना चालू करें, इसमें संदेह नहीं है। अगर ऐसा कभी हो तो लोग कहेंगे अरे वही घर के रूप में हो गया है, कहा जा सकता है। भले वो व्यक्ति अलग हो, घर को उगल करके बना करके ठीक कर दे और अलग ऑफिस में बैठे, तब भी लोग कहना चालू करेंगे अरे वही घर के रूप में हो गया है। तो मनुष्य तो थोड़ी थोड़ी बातों से ही आय के स्थापित कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, तो रिक्शा चला रहा है अगर दो चार दिन भी चलाया हो तो रिक्शे के साथ उसका इतना संबंध हो जाता है कि लोग उसको रिक्शा वाला नहीं कहते, रिक्शा कहते हैं, अरे रिक्शा उसे आय से स्थापित कर देते हैं, जब वो बिल्कुल रिक्शा से भिन्न है, रिक्शा को बनाया नहीं, कुछ नहीं किया, केवल चलाता है, साथ में रहता है, इसलिए कहते हैं रिक्शा। तो बताइए अब विश्व जिससे निकला है, उपादान वस्तु निकली है, अधिष्ठान भी वही है, वही बनाया है, तो क्या उसको नहीं कहा जाएगा कि वही विश्व के रूप में हो गया है? ये क्या गलत है। ये ट्रक चलाते हैं, हमने तो कई बार सुना है, ए चला आगे बढ़ाओ, तो वो व्यक्ति समझ जाता है कि ठेला मैंने मा है। ट्रक तो जड़ है, उसको कोई नहीं कहता है ठेला, समझता है मेरा। कभी कभी एक बार कीर्तन हो रहा था, कीर्तन में एक भक्त कुछ मृदंग बेढंगा इधर उधर कर रहा था, एक भक्त कहा ए मृदंग होने हटो उधर हटो, ए मृदंग उधर हटो। मृदंग बजाने के कारण उसको मृदंग कहा। थोड़ा सा लिंक होने से ही आय प्रस्थापित कर देते हैं। तो इस विश्व को यह कहा जाए कि भगवान ही विश्व के रूप में है तो क्या गलती है? स्वाभाविक
इसलिए गजेंद्र जी कहते हैं, गजेंद्र ही नहीं वास्तव में पूर्व जन्म में सीखा हुआ स्तोत्र है, ये तो वैदिक स्तोत्र है, तो कहते हैं यह इदम स्वयं, यह विश्व जिनके भीतर है, इस विश्व के जो उपादान कारण है, इस विश्व का जिन्होंने निर्माण किया है, इस विश्व के रूप में वो स्वयं ही है, ये बात कही जाए, यह इदम स्वयं। तब तो फिर विकार आ जाएगा कि विश्व में तो हम लोग देखते हैं घटता है बढ़ता है क्षीण होता है ये होता है, तो क्या भगवान ने दिए है? तो कहते नहीं नहीं अस्मात परमात पर भगवान इससे और दूसरे से सबसे परे, भगवान इससे भिन्न, जगत के रूप में भगवान है, तो ये नहीं समझ लेना चाहिए भगवान बस यही है घटने बढ़ने वाले नष्ट होने वाले। अस्मात कार्य जो हमारे आंखों के सामने है अनुभव में है उसको कार्य कहते हैं, कार्य, और परस्मात जो हमारे आंखों के सामने नहीं है अथवा जो अब लुप्त है उसको कारण कहते हैं। तो भगवान कार्य से और कारण से भी परे हैं, जैसे टेबल हमारे पास है, मान लीजिए यदि लकड़ी का टेबल है, झाड़ का टेबल पेड़ से बना है, तो वृक्ष इसका कारण हुआ और ये टेबल कार्य हुआ। तो भगवान उस जगत में जितने भी कार्य हुए हैं और कारण हुए हैं, कार्य के रूप में जगत है और कारण के रूप में, तो कार्य और कारण सबसे परे हैं भगवान, ये सब जड़ पदार्थ नहीं है, वो चिन्ह है, इससे भिन्न है। जगत के रूप में भगवान हैं, इस बात पर कुछ दार्शनिकों ने बहुत ही गलत निर्णय दिया है, ये ऐसा कहते हैं कि भगवान जगत के रूप में बन गए हैं इसलिए वे अलग नहीं है, जगत के रूप में ही खत्म हो गए। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है और लकड़ी को आप कुर्सी के रूप में बना दिए तो लकड़ी अलग तो रही नहीं, या मिट्टी का पिंड है और मिट्टी को आपने घड़ा बना दिया तो अब मिट्टी तो अलग रहेगा नहीं, घड़ा के रूप में हो गया। तो जब भगवान जगत के रूप में हो गए तो ये अलग नहीं है, खत्म हो गया, ऐसा कहते। इसी बात को यहाँ पर गजेंद्र विरोध कह रहे हैं, यो अस्मात परस्मात के परस, कार्य कारण से भगवान परे हैं, यदि जगत को उन्होंने बनाया है, जगत के भी रूप में है, लेकिन इससे परे वे वैकुंठ धाम में ही लीला करते रहते हैं, ये अलग, ये जगत नष्ट होगा, इसकी सृष्टि होती है नष्ट हो जाता है, बहुत से परिवर्तन होता है, लेकिन भगवान जो है कि क्यों अपने धाम में रहते हैं, उनके लीला परिकर, उनका परिवार, उनका आयस, उनका खान पान, उनकी लीलाएं जो की तय चलती रहती, ये नीचे वाले पंक्ति का अर्थ है। यो अस्मात परस्मात से परस्तम प्रपद्य स्वयं भुवन, जो स्वयं भू हैं, अपने आप हैं, भगवान को कोई बनाया नहीं, इस जगत को तो भगवान ने बनाया, जगत बनाने का मतलब है भूमि जल अग्नि वायु अभी सबके कारण में है, सभी जीवों को पैदा किए हैं, सबको शरीर दिए हैं, सबको खाने पीने का प्रबंध किए हैं, सबकी शुरुआत है, लेकिन भगवान का कोई प्रारंभ नहीं, भगवान स्वयं भू स्वयं है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए भगवान स्वयं अपने को प्रकट किए, काल से अतीत है स्वयं भू, यदि किसी काल के अंदर हो जाए तब तो माना जाएगा कि स्वयं भू नहीं, काल उनसे उत्पन्न हुआ, भगवान स्वतः सिद्ध वस्तु है, वे कभी बने नहीं है, वे सदा से हैं, सनातन पुरुष हैं, और वे बारंबार इस विश्व की सृष्टि करते हैं और प्रलय करते हैं, यह है भगवान का ऐश्वर्य ईश्वरता। आज इस जगत में कोई व्यक्ति केवल अपने भीतर से एक फलक समान निकाल दे तो सारी दुनिया में टीवी पर और न्यूज पेपर में बात फैल जाएगी, कोई सामान, जैसे मान लीजिए कागज, एक फ्रक की बात है, जो एक बक्सा कागज भी कोई अपने भीतर से निकाल दे तो उसके लोग बहुत सराहना करेंगे, लेकिन सारा विश्व भगवान ने अपने भीतर से निकाल दिया है और इस पर कोई भगवान का गुण नहीं गाता है। यह देखिए अज्ञान, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो भूमि जल अग्नि वायु और आकाश के अलावा कुछ नहीं था, कोई पर्वत नहीं था, कोई जीव नहीं था, शरीर नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल गहन अंधकार भरा पड़ा था,
तो ब्रह्मा जी को भगवान ने शक्ति दिया रचने के लिए। तो ब्रह्मा जी जब विश्व की रचना के लिए तैयार हुए तो मूल उपकरण तो थे, लेकिन उसको ले कैसे? भगवान ने बुद्धि दिया कि 5 चीज जो बनाया है इसमें से टुकड़ा मिला मिला करके गढ़ 84 लाख प्रकार का शरीर, तब ब्रह्मा जी गढ़। कहाँ गढ़ेंगे? तो भगवान ने ब्रह्मांड बना ही दिया था। सृष्टि का क्रम श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, कैसे कैसे विश्व बना है। वास्तव में बहुत सुंदर इतिहास है। अब जन्म लेने वाले लोग तो इन बातों को जानते ही नहीं है ना, वो स्वीकार कर सकते हैं। जैसे किसी घर के बनने का इतिहास होता है, वैसे विश्व के बनने का इतिहास है। या हाल बना है तो इसकी कुछ योजनाएं बनी होंगी, कुछ लोग होंगे जिनके मन में बात आई होगी कि एक हाल बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, इसका ये उद्देश्य है। उसके कुछ प्रधान व्यक्ति होंगे और उनकी इच्छा के अनुसार बना होगा, इसमें टाइम लगा, पैसा लगा, उपकरण लगे। इस बात को जो ठीक से जानता है, वर्णन कर रहे, तो कहा जाएगा हाँ भाई ठीक वर्णन कर रहा है। लेकिन कोई अज्ञ व्यक्ति कहे कि अगर उसे पूछा जाए कि ये भवन कैसे बना, आपको पता है? हाँ, ये तो एक दिन आकाश से उतर करके बैठ गया यहाँ पर, इसको कोई बनाने वाला नहीं, कोई योजना नहीं, बाई चांस बन गया। और दूसरा आएगा कहेगा कोई नहीं बनाने वाला है, प्रकृति ने बना दिया है। दोनों बातों को कहने वाला वास्तव में ना समझ, मूर्ख। इस विश्व के बारे में आजकल के वैज्ञानिक विचार करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि विश्व कैसे बन गया, तो कहते हैं प्रकृति ने बना दिया, ये बाई चांस बन गया। बाई चांस कुछ भी नहीं बनता है, बनाने वाले लोग होते हैं। इस विश्व का निर्माण करने में ब्रह्मा जी का पहला स्थान है। भगवान ने सारा उपकरण दे दिया, विधि दिया, सब कुछ। और फिर ब्रह्मा जी कई पुत्र उत्पन्न किए, उन पुत्रों ने उनको सहयोग दिया विश्व को बनाने में, रचने में। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं आज मानव जाति कितना विकसित है, कितने नगर हैं, कितने भवन बने हुए हैं, क्या क्या, तो सब मनुष्यों का हाथ लगा है बनाने में। बाई चांस क्या बना है? और बाई चांस मैंने होता क्या है? चांस मैंने क्या होता है? बाई मैंने तो से द्वारा, और चांस मैंने कुछ नहीं, ये केवल अज्ञान। अब यहाँ पर बस अड्डा बन गया है, वो बाई चांस बन गया है, रेलवे बाई चांस चल रही है, सब काम बाई चांस हो रहा है। चांस का समझ में नहीं आता है क्या हुआ है। अज्ञान के अलावा इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। किसी भी क्रिया में, किसी भी निर्माण में संकल्प है, योजनाएं हैं, परिश्रम है, कई लोगों का हाथ लगा है, इसी तरह से है विश्व। लेकिन भगवान जो हैं उसमें दूसरा कोई कारण है, स्वयं भू है। हम लोग स्वयं भू नहीं है, हमें पिता भू है, हम अपने पिता से जन्मे हुए हैं। हमारा शरीर हमारे माता पिता से जन्म हुआ, माता पिता हमारे शरीर के कारण, माता पिता के कारण दादा है, पिता के कारण दादा, माँ के कारण नाना, और पीछे धकेलते जाइए उनके कारण कौन है, उनके कारण कौन है, उनके कारण कौन है, तो उनसे पता चलेगा कि भगवान नारायण सबके कारण, नारायण से ब्रह्मा जी जन्म लिए। नारायण के कारण कौन है तो पता चलेगा स्वयं भू है, उनका कोई कारण नहीं। तो कभी कभी विचार लोग करते हैं, ऐसे बहस भी होती है, तो कहते आखिर भगवान का भी कोई कारण तो होगा। लेकिन कॉमन सेंस से आप समझिए, कोई एक व्यक्ति तो जरूर होना चाहिए जिसका कोई कारण नहीं होगा। यह सिद्धांत मानना पड़ेगा। ऐसे तर्क करने के लिए तो बहुत बहुत तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है समय खराब करने के लिए, लेकिन तर्क का कोई आधार नहीं होता। एक व्यक्ति हमसे तर्क कर रहा था, पहले बीज बना कि वृक्ष बना? उत्तर बीज। तो मैंने कह दिया पहले बीज बना, तो तर्क किया बिना वृक्ष के बीज कैसे आया, तो मैं उत्तर दे दिया वो बीज भगवान से आया। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि प्रार्थना, भगवान कहते हैं कि सर्वभूतानां बीजम माम विद्धि, और भगवान से बीज नहीं आया, भगवान ही बीज है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि, समझो कि मैं ही समस्त जीवों का वस्त्रों का बीज, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। भगवान एक है लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार की जो सृष्टि हुई है उसके कारण वे, जैसे हम लोग पृथ्वी देखते हैं, पृथ्वी एक ही तरह की है लेकिन इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे जन्म लेते हैं, फूलों का रंग भिन्न भिन्न होता है, सुगंध स्वाद सब कुछ भिन्न होता है, अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न होती है। उसी भूमि में गन्ना उत्पन्न होता है और वहीं पर उसके सटा हुआ मिर्च उत्पन्न होता है, और मिर्च का स्वाद बिल्कुल दूसरा होता है, गन्ना का स्वाद बिल्कुल उसके विपरीत होता है। बगल में इमली है तो खट्टा फेंक रहा है पृथ्वी से, आंवला कसाय फेंक रहा है। इस तरह करोड़ों प्रकार के वृक्ष हो सकते हैं, लाखों प्रकार के वृक्ष है जो भिन्न भिन्न प्रकार के साइज के, भिन्न भिन्न रंग के, भिन्न भिन्न सौरभ के और भिन्न भिन्न स्वाद के होते हैं। पृथ्वी एक है, इसी तरह भगवान एक है लेकिन उनसे अनंत अनंत प्रकार के स्वभाव वाले जीव उत्पन्न होते रहते हैं, वस्तुएं उत्पन्न होते हैं। तो ये बीज, जब मैं ये कहा कि भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, भगवान ही बीज है, तो कहते हैं और भगवान का कारण कौन है? इसका उत्तर यह है कि भगवान का कोई कारण नहीं, वो स्वयंभू है। गजेंद्र जी यहाँ पर कह रहे हैं स्वयंभू है, उनका कोई कारण नहीं। भगवान ने गीता में कहीं नहीं कहा है कि हमारा कोई कारण है, स्वतः सिद्ध कारण है, वही जगत के कारण। कभी कभी बहस करते हैं लोग तो अपनी उक्ति पर ही लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। अब तो केवल पीछे हटाते जाइए कारण को, पीछे हटाते जाइए, यह कोई बुद्धिमत्ता है? हमारा कारण हमारे पिताजी, पिता के कारण हमारे दादा, दादा के कारण पर पितामह, और उसके उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, तो केवल केवल धकेलते ही जाएंगे पीछे, कोई समाधान होना चाहिए ना। एक तो आधार जरूर होना चाहिए जिससे ये सृष्टि चली, और वो है श्री भगवान, श्री कृष्ण नारायण भगवान है कारण। बहुत शोध करके बताई गई है स्वयं हुए प्रपद्य, मैं शरण ले रहा, जस्मिन् इदं जतश्चेदं येनेदं याइदं स्वयं युष्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं। ये तो हुआ। गजेंद्र जी जो कह रहे हैं कि भगवान ने इस जगत के साक्षी हैं, विश्व हेतुत्वम स्वतः सिद्धत्वम सुक्तम इदानीं विश्व प्रकाशकत्वम स्वप्रकाशत्वम च वर्णन प्रार्थय। भगवान विश्व के कारण है तथा स्वतः सिद्ध है, ये दो बातें तो कही गई। अब यहाँ पर गजेंद्र यह कह रहे हैं कि भगवान इस विश्व के प्रकाशक, विश्व का हेतु होना दूसरी बात है, और विश्व के प्रकाशक, विश्व के प्रकाशक, प्रकाशक का अर्थ होता है विश्व को प्रकट करना, इसमें चेतना देना और इसकी व्यवस्था देना, इसकी व्यवस्था करना, इसको विश्व प्रकाशक कहते हैं। जैसे किसी ग्रंथ का प्रकाशक होता है, उसका संपादक अलग होता है, उसका रचयिता भी अलग होता है, लेकिन प्रकाशक एक होता है, पब्लिशर। तो भगवान इस विश्व के प्रकाशक, वही रचयिता है, वही सब कारणों के कारण और सब प्रकाश है, इसका वर्णन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। यह स्वात्मनिदं निजमाय अर्पितं क्वचित विभातम क्वच तत्तिरोहितम अबीध दृक्षा सुभयं तदिच्छते सयात्ममूलो वतुमांतरात्परः। यह स्वात्मनि निज माया अर्पितं इदं क्वचित विभातम क्वच तत्तिरोहितम इच्छते। किस प्रकार भगवान इस विश्व को प्रकट करते हैं और कभी कभी उसको तिरोहित कर देते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर ही स्व आत्मनि अपने भीतर ही भगवान इदम इस विश्व को अपनी शक्ति से अर्पित रखते हैं, सुशोभित रखते हैं, कैसे विभातम कभी इसको प्रकट करते हैं, अर्थात सृष्टि करते हैं। सृष्टि करते हैं तो नया सब कुछ नहीं करते हैं, पूर्व के ही विश्व को प्रकट करते हैं। जो कारण रूप से सुप्त अवस्था में रहता है विश्व, वही जीव नया जीव नहीं बनाते हैं और उनके कर्म फल के अनुसार प्रकट करते हैं। इसको विभातम का विभात विशेषण भातम व्यक्तम अभिव्यक्तम पूर्ण व्यक्त कभी जगत को व्यक्त करते हैं और क्वचन क्वचित तक तिरोहितम कभी उसको तिरोहित करते हैं। ये जगत कभी तिरोहित हो जाता है, तिरोहित का अर्थ है लीनम, भगवान में लीन होना चित्त। जैसे कोई व्यक्ति दिन में दुकान खोलता है, बहुत सी वस्तुओं को फैलाता है, लेकिन रात्रि होने पर उसको रख देता है, तो तिरोहित का अर्थ यह नहीं कि समाप्त कर दिया, बंद कर देता है, लीन कर देता है और फिर सवेरे होने पर दुकान फैलाता है खोलता है। तो भगवान इसी तरह से इस विश्व को कभी प्रकट करते हैं और कभी तिरोहित करते हैं और दोनों के साक्षी जब प्रकट करते हैं उस समय भी विश्व को पूरा पूरा इच्छते देखते रहते हैं, संभालते हैं और प्रलय काल में भी देखते हैं, अथवा काल और कारण दोनों के साक्षी हैं और स्वयं आत्ममूल हैं। ऐसे पराप पर से भी पर प्रभु मां अवतु मेरी रक्षा करे। भगवान के लिए विशेषण करें परात पर, परात कार से पर से भी पर, पर पर से भी पर, परात पर। हम लोग संपूर्ण विश्व के विषय में कुछ भी नहीं जानते और भगवान को जानते कब जगत प्रकट हो रहा है और कैसे तिरोहित होगा। सुंदर भाव है इस श्लोक के, बहुत धैर्य से सुनना चाहिए। संसारिक बात करते करते और सब बातें पढ़ते पढ़ते तो जीवन बीत रहा है, लेकिन यहाँ पर भगवान के विषय में जो ठोस शोधित विचार है प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये परंपरा से आया हुआ स्तोत्र है जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। कश्चित विभातम कश्चित तिरोहितम, भगवान कुछ काल तक उस जगत को व्यक्त रखते हैं और कुछ समय ऐसा आता है उस समय प्रलय हो जाता है, किसी भी जीव का शरीर नहीं रहता है, उस दशा को प्रलय कहता है। प्रलय काल में सारे जीव भगवान के भीतर सुप्त रहते हैं, जैसे रात्रि के समय। इधर मनुष्य समाज में आप देखते हैं कहीं कहीं कोई कोई स्थान में रात्रि के समय बिल्कुल कोई जगह हुआ नहीं होता है, न कोई शब्द होता है, न कोई काम होता है, चुपचाप सोए रहते हैं। फिर दिन आने पर दुकानें खुलती हैं, हलचल होता है नाना प्रकार। तो भगवान इस तरह बीच बीच में सृष्टि करते हैं और प्रलय कर देते हैं, ये उनका स्वर्ग है। अकेले संपूर्ण विश्व का प्रलय कर देते हैं और अकेले सब कुछ चलाते हैं, पालन करते हैं। ये अनादिकाल से इसको देखते हैं, विभातम पश्यति तिरोहितम पश्यति, इसको अभिव्यक्त करते हैं, देखते रहते हैं और तिरोहित करते हैं। लेकिन इस जगत का प्रलय होने के पहले हम लोगों का कई बार मरण हो जाएगा, हम कभी नहीं देखेंगे कि पूरा ब्रह्मांड किस तरह से प्रलय की चपेट में आ रहा है। यदि प्रलय चालू भी होगा तो पूरा विश्व का प्रलय होने से पहले ही हमारा प्रलय हो जाएगा, देख नहीं पाएंगे, है ना। कोई का क्या ऐसा है, पता नहीं कितने दिन के बाद प्रलय होगा, उसके पहले ही हजारों बार प्रलय हमारा हो जाए। प्रलय होने का मतलब मर जाना, सो जाना, ये हमारी स्थिति है। हम कितना व्यक्त नाम पड़ जाता है अमुक निरीक्षक, कल कोई सरकारी ऑफिसरों के नाम में भी अभियंता या निरीक्षक सुपरवाइजर नाम होता है, ये कितना सुपरवाइज करेंगे। कुछ रेल को देखते हैं चाहे कुछ चीज को, तो नाम होता है सुपरवाइजर। वाइजर मन भिजन, भिजन शब्द है वाइजर, देखने वाला निरीक्षक। लेकिन हम लोग संपूर्ण विश्व में किस तरह से विश्व चल रहा है, किस तरह प्रलय हो रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, किसको क्या कर्म फल मिल रहा है, कौन सो रहा है, कौन गा रहा है, कौन कुछ कर रहा है, भगवान सब कुछ देखते और प्रलय काल की स्थिति में जो देखते हैं। इच्छते का अर्थ भगवान का कभी प्रलय नहीं होता है, भगवान कभी नहीं इस तरह सोते, सदा भगवान सावधान है आनंद में। जगत का प्रलय होता है, सृष्टि होती है, भगवान सबके साक्षी, साक्षी सन उभयम इच्छते, पर से भी पर हैं, चक्षु के भी चक्षु हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। अलुप्त दृक, अविद्ध दृक, अविद्ध दृक का अर्थ क्यों साक्षी हैं, साक्षी के हेतु अविद्ध दृक, अलुप्त दृष्टि, भगवान का ज्ञान, भगवान की देखने की शक्ति कभी लुप्त नहीं होती, सर्वत्र उनकी दृष्टि है और सब काल में है और समर्थ दृष्टि है, सब देखते रहते हैं। और कोई जीव कहाँ तक देखेगा, क्या कर सकता है, कितना संभाल करके रखेगा। इतने इतने निरीक्षक हैं, इतने इतने सब हैं, फिर भी गड़बड़ियां होती रहती, कभी तो पता भी नहीं चलता है कौन चोरी किया। पूरा सृष्टि को क्या देखेंगे, अपने एक ऑफिस को भी नहीं देख पाते हैं कि इसमें से कौन सामान चुरा ले गए। तो भगवान सब देखते हैं, तो उनकी अलुप्त दृष्टि। चक्षुषः चक्षु इत्यादि श्रुते आत्ममूलम, आत्ममूल का अर्थ है आत्मा स्वयमेव मूलम जस्य, भगवान का मूल भगवान है। आत्ममूल, हम लोग पर मूल हैं, हमारा मूल, हमारा कारण कोई दूसरा है, शरीर का भी कारण दूसरा है और आत्मा के भी कारण परमात्मा, सब कुछ के कारण हम नहीं है वास्तव में किसी।